ओम शांति, ओम शांति। आज के संध्याकालीन सत्र में हम परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी का एक हाथ उठाकर के स्वागत करेंगे। सारे संसार की आत्माएं भगवान को याद करती हैं, लेकिन कोटों में कोई और कोई में भी कोई कुछ ऐसी विशेष आत्माएं होती हैं जिनको भगवान याद करते हैं, और उनमें से एक हैं आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी। आप कई बार साकार मुरली के अंदर, अव्यक्त मुरली के अंदर दीदी जी के महिमा के वो शब्द सुनते होंगे। कई बार बाबा कहते ये निर्मल आश्रम है, कई बार बाबा कहते ये सच्ची बच्ची है, कई बार बाबा कहते ये वफादार है। कितने सुंदर सुंदर टाइटल से बाबा दीदी को सजाते हैं। तो दीदी वो पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा है जिन्होंने बाबा को देखा, मम्मा को देखा, न केवल देखा लेकिन उनके संग रहे, उनकी पालना लिया। और दीदी जी वो त्याग मूर्त आत्मा है। जब ज्ञान सरोवर में दीदी की आवश्यकता हुई और दादियों ने दीदी जी को बुलाया तो दीदी एक सेकेंड में फौरन निर्णय ले लिया और विदेश छोड़कर ज्ञान सरोवर में आ गई। दीदी जी वो तपस्वी मूरत आत्मा है जिनके दिल में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। और दीदी जी वो महान आत्मा है जिनके मन में सर्व आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, जिनका मन पूरी तरह से निर्मल है। और दीदी जी वो विशेष आत्मा है जिनके लिए ब्रह्मा बाबा कहा करते थे, यदि इस बच्ची जैसी, डॉक्टर निर्मला दीदी जैसी, यदि 21 कुमारियां मिल जाए तो बाबा चुटकी में भारत को स्वर्ग बना दे। और दीदी वो सर्विसेबल आत्मा जो विश्व के पांचों ही खंडों में शिव बाबा का ध्वज लहराया है, लाखों आत्माओं को परिचय देकर के उनको नया जीवन दिया है। तो ऐसी विशेष महान हस्ती हम सभी के बीच में है। और ये सारी विशेषताओं को देखते हुए बाप दादा, ब्राह्मण परिवार, हमारे सभी सीनियर ने दीदी जी को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में ताज लगाया है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दीदी जी इतने सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची हैं, तो जरूर हम सभी चाहेंगे कि दीदी जी के बारे में जानें, किस आधार से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची हैं। तो दीदी जी से हम सबसे पहला प्रश्न यही करेंगे। हम सब यही चाहते हैं कि दीदी जी आप ये बताएं कि ज्ञान के पूर्व आपका जीवन कैसा था, आपको विशेष क्या रुचि थी, और ज्ञान के संपर्क में आप कब और कैसे आए।
ओम शांति। ज्ञान के पहले हम सुखी परिवार में थी और मेरा लौकिक परिवार वैष्णव भक्त था और अच्छी ही भक्ति करते थे। मेरी लौकिक माँ कभी प्याज लहसुन नहीं खाती थी और बाहर का भी खाना नहीं खाती थी। हमारा परिवार बड़ा था, 6 बहनें और 2 भाई, परंतु आपस में मिलजुल कर रहते थे। तो बचपन से पढ़ाई में होशियार थी, तो हमारे लौकिक पिता का विचार था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो जब मैंने स्कूल सर्टिफिकेट पूरा किया तो लौकिक पिता और माँ लड़का ढूंढने लगे। तो मैंने कहा, देखो भाई, या तो मैं शादी करूंगी या पढ़ूंगी। शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती और सारी जिंदगी फिर परिवार की पालना में चली जाती है। मैं पढ़कर फिर सेवा करना चाहती हूँ, सोशल सर्विस। उस समय तो ये सोचा था कि मेडिसिन के द्वारा मैं लोगों को की सेवा करूँगी। जब मेरी मेडिकल स्टडी पूरी हो गई तो 1962 में उषा रमेश, जो बंबई के मुख्य युगल थे, उषा मेरे साथ पढ़ती थी। तो वो जब बाबा के ज्ञान में आई तो उसने हमको मामा का प्रवचन सुनने बुलाया। उन दिनों में मामा बंबई में थी और 9 मास रही। तो उषा को जब विश्वास हुआ, और मामा संडे संडे भाषण करती थी, तो उषा ने हमको बुलाया कि आओ मामा का प्रवचन सुनो। और जैसे मैं गई, मम्मा का प्रवचन पूरा हुआ तो उसने हमारे लिए कोर्स फिक्स किया। तो मंडे से फिर मैंने कोर्स शुरू किया और फिर पढ़ाई चालू रखी, ईश्वरीय पढ़ाई।
जी, बहुत सुंदर। तो दीदी जी, हम आगे ये जानना चाहेंगे कि आप पहली बार मधुबन कब आए, और जब आप मधुबन आए, बाबा से मिले, तो आपकी क्या विशेष अनुभूति रही?
तो पहली बारी में मधुबन में 1964 मई में आई। तो उस समय क्या हुआ कि 64 में दादी निर्मल शांता यूपी पंजाब की टूर पर जाने वाली थी, तो उन्होंने हमको भी साथ में लिया। तो हम टूर करते करते अंत में मधुबन में आए और ब्रह्मा बाबा से हमारी मुलाकात हुई। उसके पहले हम बाबा से पत्र व्यवहार करते रहे। तो जैसे आए तो ऐसा नहीं लगा जैसे पहली बार बाबा से मिलते हैं, जैसे बाबा को हम जानते ही हैं। तो ऐसे समझो, बाबा को जब पहली बार ही मिलाए तो बाबा से हमारा इतना प्यार था, रिस्पेक्ट था, और लौकिक में हमारा पिताजी थे वो काफी उनका हमारे लिए प्यार था, क्योंकि मैं पढ़ने में होशियार थी और घर में भी ऑलराउंडर थी, तो हमारा पिताजी का मेरे लिए विशेष प्यार था। परंतु ब्रह्मा बाबा से मिलकर, ब्रह्मा बाबा से और भी विशेष प्यार रहा, और बाप टीचर और गुरु के रूप में जैसे कि हमने पहले से ही उनका स्वीकार किया।
जी दीदी, आप देख रहे हैं बरसात भी आपका स्वागत कर रहा है, बहुत तेज से बरसात हो रही है, हाँ तो ठीक है। तो दीदी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि हर कोई के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, और आप जब से ही ज्ञान में आई, आपकी बाबा भी इतनी महिमा करते थे, आपको सेवा की विशेष आपको जिम्मेवारी मिली विदेश सेवा की, और अभी आप देश विदेश की सेवा कर रहे हैं, तो आपने अपने जीवन में शुरू से लेकर विशेष ऐसा क्या लक्ष्य रखा, किस बात के ऊपर आपका विशेष अटेंशन रहा?
जैसे मैं स्टडी भी किया मेडिसिन, यही एम था कि मुझे मेडिकल सोशल वर्कर बनना है, सोसाइटी की सेवा करनी है, गरीबों की, और गांव में जहां डॉक्टर्स नहीं है वहां सेवा करनी है। तो इसलिए पहले से ही हमने सोचा था कि शादी करूंगी तो भी ऐसी व्यक्ति से करूंगी जो मेरे साथ कहां गांव में जाकर रहे, और ये नहीं एम था क्योंकि क्या होता है उन दिनों में पहले सगाई करते, फिर कहेंगे शादी जल्दी कर लो, फिर बच्चा पैदा हो, फिर कहेंगे अभी बच्चों की संभाल करो। तो 1952 में मैंने स्कूल पास किया, और 61 में मैंने मेडिसिन पूरी की, 62 में ज्ञान में आ गई, और फिर हमने जैसे भी ज्ञान में आई हमने कहा कि मुझे तो अभी ये रूहानी सेवा करनी। तो मैंने मम्मा से पहले पूछा कि मम्मा मेरा विचार नहीं है मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं इसी सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने कहा जब तुम बाबा से मिलो तो ये पूछना। जब मैं ब्रह्मा बाबा से मिली मैंने ये सवाल पूछा कि मुझे मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये रूहानी सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा नहीं, तुमको डबल डॉक्टर बनना है। तो इसलिए फिर जैसे भी बाबा ने कहा मैंने मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की।
तो दीदी, जब आप ज्ञान में आए तो आपके साथ में आपके परिवार में और कौन कौन ज्ञान में आया? तो जब ज्ञान में आए तो क्या आपके परिवार वाले खुश थे आपसे? कोई विघ्न रुकावट ऐसी तो बातें नहीं आई?
हमारे परिवार से हमारे लौकिक माँ बाप मम्मा बाबा से मिले, परंतु और जगदीश भाई ने उनको प्रदर्शनी समझाए, परंतु वो कहे कि ये बात हमारे लिए नहीं है। तो जब मैं ज्ञान में आई, हमारे लौकिक पिताजी बिजनेस में थे और काफी सिंधियों के संपर्क में थे, तो सिंधी लोग तो उस समय कहते थे आपकी बेटी अभी शादी नहीं करेंगी, घर जो भी पैसा है लुटा देंगी, ऐसे ऐसे करके कहने लगे। और हमारे पिताजी भी कहे, भाई हम तो देवी देवताओं के मानते हैं, तुम कैसे सीधा निराकार के तरफ। हमने कहा आप सेंटर पर आकर देखो, कुछ आपको गलत लगे तो हमको बोलना। तो उन्होंने अपने मित्र द्वारा कोशिश की, हमको कहा कि शास्त्र का ज्ञान सच्चा है, आपकी सच्ची गीता ऐसा कहती है, परंतु शास्त्रों में तो ऐसे कहते हैं। तो उसने भी हमको समझाने की कोशिश की कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान शास्त्रों के साथ मिलता नहीं है। पर हमने कहा कि हम तो इन बातों को नहीं मानेंगी, यहाँ की जो जीवन की धारणा है अच्छी लगती है। उन्होंने कहा तो तुमको जो अच्छा लगे करो, मतलब विरोध नहीं किया। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, पहले भक्ति करो। तो हमारी बहनों ने सभी ने कोर्स किया परिवार से, परंतु बाद में शादी कर ली। सिर्फ एक बहन का लड़का और उसकी बहू ज्ञान में चले, बाकी कोई ज्ञान में नहीं।
जी, तो जब आप मधुबन आए, बाबा से मिले, तो आपको तुरंत निश्चय हो गया कि दीदी जी, हमारा ये प्रश्न है कि जब आप मधुबन में आए और बाबा से मिले, तो आपको उसी समय आपको निश्चय हो गया कि भगवान इसके तन में ही आकर के ज्ञान देते हैं?
जब मैं ज्ञान में आई तो पहले 3-4 मास मेरी बुद्धि में ये सवाल था कि कल्प 5000 वर्ष का हूबहू रिपीट होता है, यो कैसे। और दूसरा, शिव बाबा भगवान है ठीक है, पर ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ाते हैं, वो निश्चय होने में मुझे 4-5 मास लग गया। जब मैंने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी और बाबा ने कई दादियों को इतने वंडरफुल अनुभव कराए थे, ये बातें सुनी, कितनी कितनी दादियों की बीमारियां बिगर डॉक्टर के अच्छी कराई, तो ये समझो जैसे कि बाबा की जादूगरी की बातें सुनकर मुझे 4-5 मास में, यानी बाबा को मिलने के पहले ही निश्चय हो गया था कि हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाते हैं। और सुनाते हैं, जब ये निश्चय हुआ तो बाबा जो कहते हैं सच, चाहे कल्प की आयु 5000 वर्ष है, हूबहू रिपीट होता है, जब भगवान कहते हैं तो सच्ची होगा ना, तो मान लिया। फिर मधुबन में आकर बाबा से मिलकर कोई विशेष निश्चय करने की कोई बात नहीं है
दीदी जी। आप लौकिक में डॉक्टर थे, आपकी डिस्पेंसरी थी, तो आपके अंदर ये इस विद्यालय में समर्पित होने का लक्ष्य कैसे आया? क्योंकि आप तो डॉक्टर थे, आपकी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि हर एक के दुकान पर चार पांच मुख्य चित्र जरूर होना चाहिए, तो दीदी ने कहा मैंने अपनी डिस्पेंसरी में भी लगाए थे, तो आपकी डिस्पेंसरी सुंदर चल रही थी, तो समर्पित होने का विचार आपका कैसे आया?
वो समर्पित तो जैसे हमने बताया, चार पांच मास ज्ञान में आया, जब निश्चय हुआ तब हमने सोचा था कि हम सेवा में लग जाएं, परंतु न मम्मा ने छुट्टी दी, न बाबा ने छुट्टी दी, न दादी ने छुट्टी दी, प्रकाशमणि दादी ने भी डिस्पेंसरी छोड़ने का नहीं किया। परंतु क्या हुआ कि मैं करीब डेढ़ साल ज्ञान में थी, और उन दिनों में बम्बई में दोनों सेंटर फ्लैट में थे, तो रमेश भाई ने कहा कि इसमें आश्रम की फीलिंग नहीं आती है, आश्रम ऐसा होना चाहिए जैसे कोई बंगलो टाइप हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कांदीवली बोईवली के तरफ देखो कि कोई मकान है, उसकी कीमत क्या है। तो हमने मन में सोचा कि हमारे लौकिक पिता ने हमारी बहनों को शादी में फ्लैट दिया, और हमारे लौकिक पिता का मकान था बंगलो, उसके पीछे उसके पास जमीन का प्लॉट था। तो मैंने मन में सोचा कि मैं बाहर मकान ढूंढने जाऊं, उसके पहले हमारे लौकिक पिता से पूछूं कि ये जमीन के प्लॉट में हम मकान बना सकते हैं क्या। तो मेरे लौकिक पिता से पूछने के पहले मैंने बाबा से पूछा कि बाबा मैं पूछूं लौकिक पिता से। बाबा ने कहा हाँ, तुम्हारे लौकिक पिता यदि जमीन देता है तो लौकिक पिता मकान बना के देगा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने लौकिक पिता से पूछा तो कहे नहीं, लड़कियों को इतना नजदीक नहीं रहना चाहिए, तुम फ्लैट ढूंढो, मैं पैसा दूंगा। तो समझो हमने फ्लैट ढूंढना शुरू किया, 65 में डिस्पेंसरी शुरू की, और हमारा फ्लैट जो था वो 66 में तैयार हुआ, क्योंकि उन दिनों में जो फ्लैट बनते थे छोटे छोटे वन बेडरूम टू बेडरूम फ्लैट होते थे, और हमको तो क्लासरूम बड़ा चाहिए, तो इसलिए मुझे दो फ्लैट लेने पड़े, और एक फ्लैट को जैसे क्लासरूम बनाया कांदीवली में, पहले डिस्पेंसरी शुरू की 65 में, 66 में ये मकान तैयार हो गया। तो फिर ये मकान तैयार हो गया तो मैं 66 सेंटर पर रहने लगी, और डिस्पेंसरी भी हमारी चालू रही, और बाबा ने हमको हमेशा एक दो बहनें दी जो कि मददगार रही, क्योंकि डिस्पेंसरी में हमारा 9 से 12 शाम को 6 से 9 टाइम, तो खाना पीना पकाना और कोर्सेस आदि के लिए भी एक बहन दी जी। और एक बहन जैसे कि खाना पकाने के लिए एक दादी दे दी
जी। तो दीदी जी, भारत से जब पहला ग्रुप विदेश सेवा के लिए गया तो उसमें आप भी थे, तो तो हम जानना चाहेंगे कि आपने खुद कहा या बड़ों ने आपको ऑफर किया, जबकि उस समय दादियां भी थी, सारी दादियां थी, तो आपका चुनाव किस आधार पे किया?
1971 में दिल्ली में इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में यज्ञ के तरफ से इंग्लिश जानने वालों की सिलेक्शन हुई, उसमें मेरा नाम भी सिलेक्ट हुआ। तो दिल्ली में हम गए तो वहाँ एक न्यूयॉर्क के योगी ने सबको निमंत्रण दिया कि हमारी जुलाई में कॉन्फ्रेंस है, आप लोग आ सकते हैं। तो वो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो मैंने अचानक मधुबन में जब थी, मैंने दादी से पूछा कि दादी ये कॉन्फ्रेंस में कौन कौन जाएगा? तो दादी ने पूछा तुम जाएंगी? मैंने कहा मैं जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे लौकिक पिता की इच्छा थी कि मैं विदेश लौकिक पढ़ाई के लिए जाऊँ, मेडिकल की आगे स्टडी करने के लिए। परंतु मैंने कहा नहीं, मुझे तो गांव में सर्विस करनी है, बड़ी डिग्री लेकर मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। तो मैंने कहा हमारा लौकिक पिता खर्च करेगा। तो जब उन्होंने नाम सिलेक्ट किया कौन कौन जाएगा, क्योंकि जगदीश भाई रमेश भाई का बहुत विचार था कि अभी विदेश की हम सेवा करें, तो नाम सिलेक्ट हुआ। उसमें मेरा, शील दादी बम्बई से, रोजी बहन मद्रास से, जगदीश भाई और रमेश भाई बम्बई से, पांचों का नाम सिलेक्ट हुआ और हम 71 जुलाई में विदेश सेवार्थ गए। और विदेश सेवा में जाने के बाद जगदीश भाई कहे कि भाई हम सिर्फ चक्कर लगाकर जाए अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने वर्ल्ड टूर का प्लान बनाया था, इंडिया से ब्रसेल्स होके, लंदन होके, अमेरिका होके, फिर एशिया से आने का प्लान था। और जहाँ जहाँ कोई लौकिक मित्र संबंधी आदि आदि थे, उनको हमने लिखा कि हम लोग आ रहे हैं, हमारा रहने का या प्रोग्राम का प्रबंध करना। तो जब हम टूर करते करते सैन फ्रांसिस्को पहुँचे, तो लंदन वालों ने मकान ढूंढ के रखा था, क्योंकि जगदीश भाई का ऐसे टूर करके थोड़ी चले जाना है, हमको सेंटर कहाँ शुरू करना है। और लंदन में 10-12 स्टूडेंट्स तो थे ही उस समय 71 में, जयंती बहन के लौकिक माता रजनी बहन थी, और उन्होंने सेवा करके 10-12 स्टूडेंट बनाए थे। और तो जब सैन फ्रांसिस्को में पहुंचे तो उन्होंने मकान ले लिया था। तो फिर हमारी मीटिंग हुई, क्योंकि दादी कहे कि आप में से ही अभी कोई सेवा करने जाओ। तो जगदीश भाई कहे मुझे तो मैगजीन का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। रमेश भाई कहे मेरा तो बिजनेस है, मुझे जाना पड़ेगा। शील दादी और रोजी बहन कहे हमारा तो माँ बूढ़ी है, बीमार है, हमको जाना पड़ेगा। फिर मैं वापस लंदन गई और लंदन सेवा शुरू की।
आपने नहीं बोला कि मेरी डिस्पेंसरी है? आप रुक गए?
हाँ।
अच्छा अच्छा दीदी जी, हम आपके जो भिन्न भिन्न टाइटल सुनते हैं बाबा समय प्रति समय आपको बहुत बहुत सुंदर टाइटल से संबोधन करते थे, तो ये बाबा आपको पत्र में लिखते थे या बाबा के सम्मुख होते थे तो कहते थे, या आप कोई विशेष कार्य करके आते थे तो कहते थे, माना इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
क्या होता था कि जैसे हमारे लौकिक पिता ने फ्लैट के लिए मकान के लिए छुट्टी दी, ज्ञान में नहीं थे पर फिर भी उन्होंने सहयोगी बनकर काफी मदद की, तब बाबा ने महिमा की। और यूजुअली तो सन्मुख जब मुरली में बैठे होते थे तब बाबा महिमा करते थे। कभी कभी जैसे आपने कहा ना, दादी जी को कहा तो मेरे सामने बाबा ने नहीं कहा, मेरे पीछे दादी जी को कहा कि ऐसी कुमारियां मुझे मिल जाए, 21 नहीं पर 30 कहा था, 30 कुमारियां मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग बना दूं। तो वो हमारे पीछे महिमा की थी। और क्योंकि बाबा से हम मिलते थे, गले लगते थे, तो बाबा को नहीं मालूम पड़ जाता था पवित्रता का, और हमारी बोल चाल चलन पहन सहन सब देखकर बाबा व्यक्ति को बहुत अच्छी रीत से पहचान जाता था। और जब पत्र लिखते थे तो पत्र में भी महिमा लिखते थे।
जी दीदी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप बाबा मम्मा के संग रहे, आदि से आपने यज्ञ को देखा, तो आदि का यज्ञ और आज के समय में क्या विशेष अंतर दिखाई पड़ता है?
क्या है कि विस्तार तो बहुत हुआ है
जी।
जब बाबा अव्यक्त हुए, मैं समझती हूँ हमारे 125 के करीब सेवा केंद्र थे। जब दादी जी ने शरीर छोड़ा, हमारे 125 देशों में सेंटर खुल गए और लाखों लोग बाबा के बच्चे बने। तो प्रकाशमणि दादी और दीदी ने विस्तार बहुत किया, मधुबन को भी, उस समय तो पांडव भवन ही था
जी।
तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद मेडिटेशन हॉल बना, ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, शांति वन बना, तो विस्तार बहुत हुआ। पर दादी प्रकाशमणि भी नंबर 1 लीडर, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो हम देखते हैं दादी प्रकाशमणि के बाद यज्ञ में ऐसा कोई लीडर नहीं रहा। तो नेचुरली है कि सर्विस तो सेंटर वाले वृद्धि करते रहते हैं, मधुबन में लोग आते रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा की भी व्यक्त में पालना ली। और ब्राह्मण की संख्या बहुत बढ़ गई है, परंतु लीडर मैं समझती हूँ दादी जैसा नहीं
जी। एक तो ये बात रही, लेकिन दूसरी बात तब के पुरुषार्थ में और अब के कुछ पुरुषार्थ से संबंधित में कुछ, या जैसे पहले कुछ तपस्या के से प्रोग्राम चलते थे, आज उस प्रकार से त्याग तपस्या जैसे पहले था उसके अंतर में आज कुछ भिन्नता
क्या है? कि फर्क बहुत पड़ गया है। जब दादी थी, दादी के एक वचन में सब हो जाता था, और उस समय त्याग तपस्या सेवा सब का उमंग था। अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया वालों का असर ब्राह्मणों पर भी है। हमारी विदेश की एक बहन कहती थी कि जब पांडव भवन है तो वो फील होता है ये हमारा
घर है,
माँ बाप का घर है। ये हुआ ज्ञान सरोवर तो ऐसे लगता है यूनिवर्सिटी
टीचर का।
और शांतिवन हुआ
सतगुरु
तो समझते हैं तीर्थ धाम। मतलब जो वृद्धि होती है उसमें कुछ भक्ति के संस्कार भी है
जी।
और मधुबनवासी भी इतने त्यागी तपस्वी और स्टडी में इतने तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, तो फर्क तो बहुत पड़ गया।
बाकी अभी सेवा की वृद्धि बहुत हो गई है, सेवा में सब बहुत बिजी हो गए हैं। तो दीदी, हम देखते हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा की मदद का समय प्रति समय कुछ ना कुछ अनुभव है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसी कोई विघ्न या समस्या आई हो जिसमें बाबा की विशेष मदद मिली हो, तो उस घटना के बारे में हम जानना चाहेंगे।
क्या है कि शुरू से ही मैं तो समझती हूँ, मेरा भाग्य कहो या बाबा की मदद
जी,
जो हमें इतने विघ्न नहीं आए। मैं कहती हूँ हमारा सहज ज्ञान, सहज योग, सहज ही हो गया। परंतु क्या होता है कि कभी कभी नेचुरली है, परीक्षा तो आती है। और समझो सबसे ज्यादा मदद मैं ऐसे कहूंगी कि मैं जब न्यूजीलैंड गई पहली बारी, कोई सेंटर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया से मैं जब पहली बारी निकल रही थी 76 में, तो क्या हुआ कि डाया काका जो कि नैरोबी की प्रतिभा के लौकिक पिता हैं, उसने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया से अभी निकल रही है, न्यूजीलैंड फिजी का चक्कर लगाओ क्योंकि वहाँ बहुत इंडियन है। तो हमने वहाँ पत्र लिखा सब ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी इंडियन एसोसिएशन है सबको पत्र लिखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन डिवाइन लाइट सोसाइटी जो कि शिवानंद जी यहाँ ने शुरू किया था, वो वहाँ ऑकलैंड में थी, और वहाँ न्यूजीलैंड के एक भाई चला रहे थे, उन्होंने कहा आप आओ, हम आपको एयरपोर्ट पर लेने आएंगे और आपके प्रोग्राम रखेंगे। तो मैं ऑकलैंड पहुंची, ऑकलैंड में उसने कहा कि आप एयरपोर्ट से बस लेके सिटी टर्मिनस पर आ जाना। तो मैं 1 बजे सिटी टर्मिनस पर सवेरे पहुंची और कोई आया नहीं था लेने के लिए। तो मेरे पास जो पत्र था ना, उनकी ऑफिस का एड्रेस था और मुझे मालूम नहीं था कि ऑफिस है, आश्रम है, क्या है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली एड्रेस वहां से लिखा था। तो जब कोई आया नहीं तो मैं टैक्सी करके वहां पहुंची। तो वो तो ऑफिस थी, बड़ा दरवाजा था, गेट जो बिल्कुल बंद था
जी।
तो टैक्सी ड्राइवर को हमने कहा ये तो क्या है, तो कहा मुझे फोन नंबर दो, मैं फोन करता हूँ, क्योंकि नहीं तो हमारे पास तो कॉइन भी नहीं होते, क्योंकि वहां तो पब्लिक फोन से फोन करना होता था। तो उसने फोन किया तो वो कहे कि भाई हमारा ड्राइवर आया था पर उसकी कार रास्ते में खराब हो गई, तो आप हमारे आश्रम पर आओ। फिर उसने अपना आश्रम का एड्रेस दिया जो शहर से 8 किलोमीटर दूर था। यह ऑफिस उनकी शहर में थी। एयरपोर्ट से शहर में गए, शहर से उस आश्रम में गए। तो जैसे कि उस समय हम कहेंगे बाबा की मदद रही कि अच्छा ट्रेस्की ड्राइवर रिया मिला जो हमको अपने स्थान पर पहुंचाया। तो वहां भी तो पहुंची तो वहां आग लगी थी 1-2 मास पहले, अंधियारा और कई कमरे उनके थे भी नहीं। तो वहां भी हमको फिर एक न्यूजीलैंड की गोरी माता के साथ रख दिया, और उनको तो आदत नहीं कि अपने रूम शेयर करना, और वो भी इंडियन, तो उसको पसंद तो नहीं आया पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। तो 2-4 दिन वहां रही। पीछे तो इंडियन एसोसिएशन में संडे भाषण हुआ और फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाते रहे तो सहज हो गए।
अभी समय पूरा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और दीदी जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच आई और बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन की कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट किया। दीदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।